অনাদি করম ফলে পড়ি ভবার নব জলে, তরিবারে না দেখি উপায়। অনাদি করম ফলে পড়ি ভবার নব জলে, তরিবারে না কইনু উপায়। এ বিষয় হলা হলে দিবানি সিহিয়া জলে, বিষয় হলা হলে দিবানি সিহিয়া জলে, মন কভু সুখ নাহি পায়। মন কভু আশা পাশ শত শত ক্লেশ দেয় অবিরত, আশা পাশ
শত শত ক্লেশ দেয়
অবিরত, প্রবৃতি উর্মির তাহে খেলা, প্রবৃতি কাম ক্রোধ আদি ছয় বাট পড়ে দেয় ভয়, কাম ক্রোধ ছয় বাট পড়ে দেয় ভয়, অবসান হইল আসি বেলা, অবসান হইল আসি বেলা, জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই, জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই, অবশেষে ফৈলে সিন্ধু জলে, অবশেষে ফৈলে সিন্ধু জলে, এহে না সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু, এহে না সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু, কৃপা করি তোল মোরে বলে, কৃপা করি তোল বলে, পতিত কিঙ্করে ধরি পাদ পদ্ম ধুলি করি, পতিত কিঙ্করে করি পাদ পদ্ম ধুলি করি, দেহ ভক্তি বিনোদে আশ্রয়, দেহ ভক্তি আশ্রয়, আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পাশ, আমি তব
নিত্য দাস
বদ্ধ হয়ে অছি দয়াময়, বদ্ধ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কহতে হ্যাঁ, অহো मैं अनादि काल से अनंत कर्म के फल से इस संसार रूपी सागर के जल में पड़ा हुआ हूँ तथा इससे पार होने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। इस संसार के विषय रूपी विष से मेरा हृदय दिन रात जल रहा है, एक क्षण के लिए भी मेरे मन को शांति नहीं है। सैकड़ों प्रकार की सांसारिक आशाओं के बंधन मुझे निरंतर क्लेश प्रदान कर रहा है, उस पर भी प्रवृत्ति रूपी लहरें खेल रही है, अर्थात नाना प्रकार के विषयों को भोगने की इच्छाएं और भी कष्ट प्रदान कर रही है। इस पर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि छह डकायत ने मुझे भयभीत कर रहे हैं तथा अब तो मेरा जीवन भी समाप्त होने वाला है। ज्ञान और कर्म रूपी दो ठग ने मेरा सब कुछ परमार्थ लूट लिया तथा अंत में इस भवसागर के जल में फेंक दिया। अतः हे कृष्ण, आप तो कृपा के सागर है, अब इसी स्थिति में आप ही मेरे एकमात्र बंधु है, कृपा करके मुझे बलपूर्वक इस संसार सागर से ऊपर उठा लीजिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे दयामय, आपने इस पतित किंकर को अपनी चरण धूलि बनाकर आश्रय प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं, परंतु माया के फंदे में फंसकर मैं आपको भूल चुका हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के अंतर्गत नवम अध्याय की श्लोक संख्या 21 पाठ करेंगे। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं जदजयार्पित षोडशारं, संसार चक्र अजको तिततरे तदन्यः। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं यदजार्पित षोडशारं, संसार चक्रम अजको तितरे त्वदन्यः। कोई एक जन इधर से, एक जन इधर से, बस। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयम्, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं यदतार्पित षोडशारं, संसार चक्रमजको तितरे त्वदन्यः। मनः सृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारं, संसार चक्रमजको तितरे त्वदन्यः। शब्दार्थ, माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग आसक्ति, मना मन जो सदैव योजना बनाता है कि किस तरह इस जगत में भोगा रहा जाए, कर्ममयम हजारों इच्छाओं को उत्पन्न करके उसके अनुसार कर्म करती हुई, बलियः अत्यंत बलशाली, दुर्गेय कालेन समय के द्वारा, चोदित गुणा जिनके तीनों गुण विक्षिप्त होते हैं, अनुमतेन कृपा दृष्टि से अनुमति प्राप्त, पुंसः भगवान श्री कृष्ण के अंश महाविष्णु, छंदोमयम मुख्यतः वेदों के निर्देशों से प्रभावित, यत जो अजया अज्ञान अंधकार के कारण अर्पित चढ़ाया गया, षोडश सोलह अरम तिलियां संसार चक्रम विभिन्न जुनियों में बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र अज हे अजन्मा कह ऐसा कौन है अतितरित तरने में समर्थ बाहर निकलने में समर्थ तद अन्य आपके चरण कमलों की शरण लिए बिना। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु हे परम शाश्वत आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा क्षिब्ध होने वाले अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस में लेता है जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा सोलह तत्वों के द्वारा पूरा किया गया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण लिए बिना इस बंधन से छूट सके। तात्पर्य यदि हर वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हाथ है तो भौतिक बंधन से छूट करके आध्यात्मिक जीवन में जाने का प्रश्न कहां उठता, क्यों जाए। निसंदेह है यह तथ्य है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवः, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के सारे कार्यकलाप परमेश्वर के आदेशों से भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में आगे पुष्टि हुई है मया अधखेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, परमेश्वर के आदेश के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्यशील नहीं हो सकती। अतः प्रारंभ में जीव तो भौतिक शक्ति का भोग करना चाहा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने जीव को सारी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस भौतिक जगत की सृष्टि की और जीव को सुविधा प्रदान की कि वह मन के द्वारा नाना प्रकार के विचारों तथा आयोजन की कल्पना करे। जीव को भगवान द्वारा ये सुविधाएं सोलह तत्वों के प्रतिबिंबित रूप ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन तथा पांच भौतिक तत्वों में मिली है। जन्म मरण के ये चक्र की सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है, किंतु प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मोहग्रस्त जीव को निर्देशित करने के लिए वेदों छंदोमयम में अनेक उपदेश दिए गए हैं। यदि कोई उच्च लोक में जाना चाहता है तो वह वैदिक आदेशों का पालन कर सकता है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है जानति देवव्रता देवान पितृं जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्या जानति मद्याजिनोपिमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं ये देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे इन्हीं के बीच जन्म ग्रहण करते हैं, और जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। वेदों का असली अभिप्राय जीव को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग निर्देश करना है, किंतु जीव आपने जीवन के असली लक्ष्य को न जानने के कारण कभी यहाँ जाना चाहता है तो कभी वहाँ जाना और कभी वह करना चाहता है तो कभी वह, इस प्रकार वह विभिन्न जोनियों में बंदी बनकर सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है और ऐसे कार्य में प्रवृत्त होता है कि जिसके फल से उसे भोगना पड़े अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। पतित जीवात्मा माया के फस से बंध कर भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि भाग्यवश उसे भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है जो उसे भक्ति का बीज प्रदान करता है, और यदि वह ऐसे गुरु या ईश्वर के प्रतिनिधि का लाभ उठाता है तो उसे भक्ति लता बीज अर्थात भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है। यदि वह उचित रीति से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत तक उठा दिया जाता है। इससे अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को भक्ति योग के सिद्धांतों की ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होगी। इस भौतिक संघर्ष से मुक्ति की कोई अन्य विधि संभव नहीं है। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। इस ठंडी के मौसम में प्रातःकालीन भागवत कक्षा में कष्ट उठाकर पधारने के लिए ये प्रह्लाद महाराज की प्रार्थना भगवान नृसिंहदेव का सामने। घटना इस प्रकार है, कई आपसे आज पहली बार आए हैं और बाकी आगे आएंगे कि नहीं डाउट है मेरा है, तो इसलिए पूर्वापर प्रसंग थोड़ा बोलना उचित है कि स्थिति इस प्रकार है कि तिलोकाधिपति हिरण्यकशिपु का रॉयल असेंबली हॉल, उसके राजसभा भवन, उसमें उनके जो अति उच्च विशेष आसन पर भगवान श्री नरसिंह देव अपने फुल पोटेंशी पर बैठे हुए हैं, उनके गोद में हिरण्यकशिपु का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और उनके सामने पास में ही निकट प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु के बेटा, जिनके पिताजी का मर्डर हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है, वहीं खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और थोड़ी सी दूर में सारी देवताओं देवियां और सारे गंधर्व किन्नर आदि आदि जितने सारे आकर के खड़े हो करके भगवान को थैंक यू दूर से दिए, दूर से उनके महिमा गाए और उनको पूजा करने के लिए माला पहनाने के लिए प्रयास करते, डर करके कोई नहीं जाते पास में। अंततः ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद को बोले, देखो बेटा तेरे लिए ये सब हमारे ठाकुर जी ने गुस्सा हुए हैं, तू भी जाओ। प्रह्लाद बोले ओके। प्रहलाद जी ने माला लेकर जाते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं शांत हो जाने के लिए। भगवान को शांत करने का दायित्व जिनका पिताजी के मर्डर हुआ है वही स्वयं कर रहे हैं, अपने पिता के मर्डरर को शांत करना चाहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, और स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति में प्रहलाद महाराज क्योंकि एक महाभागवत भक्त पुरुष हैं, एक एक स्तुति में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं भरी पड़ी है। और स्तुति करते हुए पहले तो अपने को बोले, हे प्रभु ये तो मुझे सुन करके देख कर बड़े आश्चर्य लग रहा है, ये ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता जो सत्वगुण के अधिपति, एक से एक ज्ञानी ध्यानी कुलीन, आप वो सब फेल मार गए, उनके स्तुति से प्रसन्न नहीं भय, मैं ही असुर कुल उत्पन्न एक बाचाल बालक निहत्ता, मेरे द्वारा क्या है गुण मेरे पास में, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु, इतना तो मैं आपको भजन करके अपने गुण को जो समझाऊं कि मैं जानता हूं आप द्विषण गुण युक्त 12 गुण समेत प्रकांड विद्वान कुलीन ब्राह्मण के द्वारा भी प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई चांडाल भी अगर आपका भक्त हो तो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, ये आपके स्वाभाविक गुण है प्रभु, तो इसलिए इस साहस इसी स्वभाव के कारण मैं दुस्साहस करता हूं कि आपको कुछ सांत्वना प्रदान स्तुति कर पाऊं। जज भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूल से रस्टिकेट कर दिए मुझे, स्कूल से निकाल दिए थे, पढ़ना भी नहीं चाहता था ये कोर्स, और जो भी हो इस प्रकार मेरा का है आप जानते हैं, लेकिन जो मेरे मन में आता है मैं बोलता हूं। प्रभु अब मैं क्या कहूं, आपको खुश करने के लिए बड़े बड़े देवाधि देव प्रयास करके दूर खड़े हैं, वो डरते हैं आपके भयानक रूप को देख करके, आपके खतरनाक आयाल उसमें रक्त टपक रहा है ताजा, मेरे पिताजी को फाड़ करके अंत के माला पहने हुए हैं, इतने भयानक भावना दृश्य को देख करके कौन नहीं डर जाएगा, बड़े बड़े देवता भी पास नहीं आते दूर खड़े रहते हैं, आपके श्रीमती लक्ष्मी जी भी दूर भाग गई, लेकिन प्रभु मैं तो नहीं डरता क्योंकि मैं तो आपके बेटा हूं, मैं इस भावना दृश्य को नहीं डरता हूं। सिंह शावक सिंह कितने भी भयंकर हो थोड़ी ना डरेगा वो, तो इसलिए मैं तो आपके पोता हूं, मैं नहीं डरता हूं, लेकिन प्रभु मैं डरता जरूर हूं। एक चीज को मैं भय करता हूं, संसार चक्र कदनाद ग्रसितोस्मि, हे प्रभु मैं त्रस्तोस्मि, अहं त्रस्तोस्मि, मैं भी त्रस्त हूं, भयभीत हूं, किससे, आपके इस भयानक रूप से नहीं, जिसको बड़े बड़े देवता लोकपाल डरते हैं इसको मैं नहीं डरता। मैं किसको डरता हूं, मैं केवल डरता हूं मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म चक्र के पास में फंस करके इस महा संसार चक्र में जो पीसी जा रहा हूं, मेरे शत्रुओं के बीच में मुझे डाल दिया गया, राक्षसों के बीच में मुझे डाल दिया गया, इस प्रकार जो भयंकर काम क्रोध आदि लोभ आदि कष्टों के बीच में पड़कर मैं जो कष्ट भोग रहा हूं, पीसी जा रहा हूं, इसी को भयभीत हो रहा हूं, कब इससे छूटूं, कब इसे छुटू, यही सबसे बड़ा भया बना है। देखिए प्रहलाद महाराज जब भगवान के भयंकर रूप को डर नहीं रहे थे, किसको डर रहे हैं, इस संसार से निकलने के लिए, संसार चक्र में पड़े हुए हैं, इसे कब निकल पाऊं कोई उपाय नहीं दिखता। अनादि कर्म फड़े पड़ी भवान न जले तारी बाने ना देखी उपाय, कोई उपाय नहीं दिखता, कहीं से निकले कोई उपाय नहीं है। आज के श्लोक में श्री नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद इसी को बोल रहे हैं, इस बात को जद्य पे आगे कहे कि मैं डर नहीं रहा हूं उसको, हे प्रभु जद्य भी मैं संसार से निकलने के उपाय नहीं देखता हूं, लेकिन फिर भी मेरा पूर्ण भरोसा है आपके भक्त जनों से मैं सुना हूं, क्योंकि आपके भक्त जनों के संरक्षण में रह करके उनके संग से भवदीय लीला कथा आपके लीणा गुण कथा को अगर बोलूं और सुनूं तभी संसार सागर को मैं तर जाऊंगा, ये तो मेरा विश्वास है, लेकिन मैं अकेले तर जाऊं क्या करूं, ये सारे मेरे सागे संबंधी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या करूं, उनके लिए मैं सोच रहा हूं, मैं अकेले जाना नहीं चाहता हूं, मैं इतने स्वार्थी नहीं हूं, मैं जितने हो सके संभव सबको लेकर जाना चाहता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि आप कृपालु हुए, आप हमको बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और आपके बिना इस भयानक संसार से सब पीछे जा रहे हैं, अनंत जन्म से अनंत जोनि में मैं भटका हुआ हूं, और हर जोनि में मैं गया हूं यही अभिज्ञता मेरा मिला है, मुझे याद है क्या आपकी कृपा से, न दो ही दुख के कारण है, प्रिय की वियोग और अप्रिय की संयोग, जिनको मैं चाहता हूं वो नहीं मिलता, मेरे से छुड़ा दिया जाता है, और जिनको मैं नहीं चाहता वही मेरे से दे दिया जाता है, ऐसे प्रिय वस्तु की वियोग वियोग और अप्रिय वस्तु के संयोग के जो दुख, इस दुख से झुलसता हुआ अनंत जन्म व्यतीत कर दिया मैंने, और इससे निकलने के लिए उपाय भी किया, उपाय भी ताते बढ़कर और दुख है, इस रोग से निवारित होने के लिए जो मेडिसिन खाया मेडिसिन भी और दुख है, हा? और भी दुखदायी है, तो कुछ नहीं दिखता कि क्या करूं, अभी तक तो मैंने इस संसार में फंस करके मुझे भूल करके इस शरीर को और अन्य किसको अपना मान रहा था, सचमुच आपको भूल चुका हूं प्रभु, आप ही मेरे एकमात्र बंधु, आप ही एकमात्र मेरे सुहृत, आप ही एकमात्र पालन करता रक्षा करता सहायक करता, आपको भूल करके दूसरे की हेल्प ले रहा था मैंने अभी तक, यही मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, और आपके बिना संसार में कितने कोई नजदीक क्यों ना हो, कितने भारी भारी उपाय क्यों ना हो, कोई बच पाएगा क्या प्रभु, नहीं बचेगा, नहीं, गारंटी देकर कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े देखा हूं, माता पिता अपने लाडले प्यारे नन्हा शिशु को गोद में लेकर के कितने धन शक्ति और उपाय व्यय करके उनको आनंद प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन देखते देखते उसने गोद में बच्चा मर ही जाता है। कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता, कोई दवाई उसको मदद नहीं कर सकता, माँ बाप कोई उनको मदद नहीं कर सकते। प्रभु आपके उपेक्षा करके कोई बचा सकता किसको? नहीं। समुद्र में डूबते हुए कोई व्यक्ति को अगर नौका मिल जाए तो अरे सहारा मिल गया, मैं तो अभी तर जाऊंगा। लेकिन हाय प्रभु, अनुकूल वायु और बड़े मजबूत नौका, बड़े एक्सपर्ट कैप्टन में मिल जाए, लेकिन आप न हो तो सारे बेकार जाए, वो तर भी नहीं पाएगा, ये तो निश्चित कहता हूं। तो इसलिए प्रभु आपको उपेक्षा करके कोई उपाय, कोई उपकरण यहां से हमको मुक्ति नहीं दिला सकता। और ये संसार के रूप में तो आप ही फैले हुए हो। पहले वाले श्लोक में पूरे व्याकरण के सातों विभक्ति लगा दिए, बोले क्या आप नहीं है? बोले ये दुनिया में जो भी बड़े छोटे सब आपने आपको कर्ता मानते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते। बोले जितने बड़े छोटे कर्ता है, उन कर्ताओं ने जो कर्म करते हैं और कर्म को करने के लिए जो करण है, उपकरण के यूज करते हैं, और जो जिनके लिए संप्रदान, जिनसे आता है अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सब सातों उपाय लगाने सारे आप ही तो है। आप ही सब कुछ ही विश्व में सर्वरूप में फैले हुए हैं। तो इसी की बात कहते, आप ही तो सब कुछ फैले को नहीं प्रभु, आप ही फैल कर रखें, लेकिन ये आपकी माया है, आप ही नहीं है। क्या है इस श्लोक में कहते हैं, माया सृजितं, ये सभी रूप में फैले हैं। ये क्या फैला हुआ है? माया। क्यों माया में फैल कर हमको डाल कर रखें? क्यों? क्योंकि हम आपको भूल करके अलग से सुख भोगना चाहे, यही कारण है। यही कारण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बीच में इस बात को कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जीव बिगिनिंग से अलग से कुछ भोगना चाहा, सुख भोगने की इच्छा किया, इस भौतिक प्रकृति की ओर दृष्टि करके बोला है कितना बढ़िया यार, थोड़ा उसको भोग लिया जाए, ये विचार जीव के मन में आया। जीव नित्यतः आपके सेवक है, आपके दास है, आपके सेवा करके वो परम प्रसन्न हो सकता है, होना ही चाहिए। इसी के लिए उनको ये सारे सुविधा मिला, जीवत्व मिला, शरीर मिला, मन बुद्धि वचन सब कुछ इसके लिए मिला कि भगवान के नजदीक जा करके भगवत सेवा करके परम प्रसन्न हो जाए, प्रभु के द्वारा प्रसन्न हो जाए। लेकिन उसको ये चांस को देख, माया को, माया से ये बहिरंगा शक्ति, ये सृष्टि को देख करके उसको भोगने के मन में एक विचार लाया कहीं, बस इस विचार के कारण प्रभु तो बड़े कृपालु बोले, अच्छा आप चाहते हो गो तो यहां भेज देते हैं, यहां तो सब मेरा है, वहां मैं मेरा करने के लिए भौतिक संसार सृष्टि करके वहां भेज दिए उसको, बोले जा। और भौतिक संसार ऐसे सृष्टि किए हैं, ये हमारे लिए किए हैं, हमारी गलती है, हम अलग से भोगना चाहिए आपसे भूल करके, इसमें आपका कोई हम दोष नहीं देते हैं, अपना गलती के कारण हम ही ये संसार में फंसे हुए हैं। और विषय सुख की आसक्त, भोग वासना से आसक्त हो करके ना जाने कितने जन्मों से कितने प्रकार शरीर धारण करके भोग रहे हैं सुख दुख, लेकिन उसे निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। और निकलने के लिए सारे व्यवस्था आप ही ने किए हैं, निकलने के उपाय भी दिए हैं। क्या उपाय? ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाता। अगर संसार में ये दुख सुख से भ्रमित करते करते कोई बाई चांस कोई साधु वैद्य मिल गया, ये महाव्याधि, ये संसार व्याधि से निकलने के लिए डॉक्टर हैं भगवत भक्त, कोई साधु वैद्य की उनका भेंट हो गया और उनके उपदेश से, उनके प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन से ये माया छूट जाएगा, इस माया छूट जाएगा। क्या उनका प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन? ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। दो ही काम करना पड़ेगा जीव को, यही गड़बड़ करके फंसा हुआ है। तो साधु वैद्य की उपदेश मान करके इस माया से छूट सकता है, माया से छूटने से हम सुखी हो जाएंगे क्या? बोले नहीं, ये तो हमारा दुर्बुद्धि है कि हम सुख क्या जानते ही नहीं, शुरू से दुख में ही पले पड़े हैं, तो दुख को ही हम जानते हैं, सुख के फॉर्मूला पता नहीं पड़ा हमको, तो इसलिए सुख क्या है कि पूछते हैं भैया सुख क्या, पता नहीं, लेकिन बात जानता हूं ये दुख से बच जाऊं तो सुखी हो जाऊं, क्यों दुख को जानता हूं, सुख कभी जानता ही नहीं कौन क्या है, तो दुख निवृत्ति को ही सुख माने। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, दुख मिट जाए सुखी हो जाएगा कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि सुख कोई अलग चीज है। एक कैन देखते हैं ना, उसके दो साइड होता है, एक हेड एक टेल है ना, अगर हेड साइड को दबा दो मिटा दो तो टेल हो जाएगा क्या? नहीं, दुख को मिटाने से सुख हो जाएगा यह हमारा भ्रम धारणा है, सुख कोई अलग चीज है, दुख अलग चीज होता है। पाप करके पुण्य के द्वारा पाप को काउंटरैक्ट कभी नहीं हो सकता, पाप को दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग से सुख भी भोगना पड़ेगा, दोनों ही खतरनाक है, वो काउंटरैक्ट अपने से कभी नहीं होते ना, ना। सुख अलग चीज है, दुख अलग चीज है, और सुख क्या जानते ही नहीं, इसलिए हम फंसे हुए दुख से। लेकिन प्रभु सुख जो है सो है, तो इसलिए दुख निवृत्ति को मानते हैं, दुख निवृत्ति होकर सुख नहीं पा सकते, आपने कभी नहीं पा सकते। तो कैसे? साधु वैद्य के उपदेश से केवल मायाजाल से छूट जाने से सुखी नहीं हो जाएंगे, सुखी होने के लिए क्या करेंगे, माया से छूटना तो पड़ेगा, केवल छूटने से नहीं होगा, छूट करके कृष्ण के चरण में जाकर के उनको सेवा करना पड़ेगा, तब जाकर के सुखी होगा। वो भी इसी के लिए कहते हैं ताते, इसीलिए क्या सही उपाय है ना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, कृष्ण को भजन करना पड़ेगा खूब जम करके, और उसके साथ साथ गुरु के तत्वावधान उनके सेवा करना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा करने के लिए हमारा कोई क्वालिटी नहीं है, ना लायक है हमने, ना तो कृष्ण हमारा सेवा चाहते हैं, कृष्ण सेवा करें तो किसान, कृष्ण बोलते मेरे सेवा तू क्या कर गया हड़बक खट, तू जिसका सेवा कर सकता है सुकर ना कौन है, ना मेरे आदमी जो है, मेरे लोग हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, उनके सेवा, वो भी सेवा चाहते हैं तो उनके सेवा कर सकता है, उनके सेवा कर, मेरे भजन कर। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, ये दोनों करने से क्या होगा ना, दो काम हो जाएगा, ये दो काम करने से दो काम क्या होगा ना, एक तो माया जाल से छूट जाए, माया छूट देगा, बोला गया, हाथ उठा दे, बोला गए तू, और डिलीट मारता हूं तेरे नाम, गया तू जा, माया आपको छोड़ देगा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण, कृष्ण चरण प्राप्ति हो जाएगा, कृष्ण चरण प्राप्ति ही हमारे सुख के एकमात्र उपाय है, माया जाल से छूटने से नहीं होगा, दुख से निवृत्ति से सुख नहीं होगा, कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण सेवा प्राप्ति ही अमर वास्तविक सुख है, और इसी के लिए हमको दिव्य दुर्लभ मानव देह मिला है, इसी के लिए मिला है। बहुत बड़े संत हो गए कबीर जी, उनके एक कथन आप लोग सब जानते होंगे, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, है ना, नहीं, आशा मरी ना तृष्णा मरी, कह गए दास कबीर, है ना, नहीं, बोलते हैं कि माया कभी नहीं मरेगा ना मन कभी मरेगा, ये शरीर बूढ़ा होकर के सड़ करके मर भी जाए ना माया छूटेगा ना मन से बचेगा, शरीर मिट जाएगा, कितने बार मिटा है, अभी भी मिट रहा है, मिटने को है, लेकिन माया मिटा ना मन से छूटे ना, माया मरे ना मन मरी, मर मर गए शरीर, आशा मरी ना तृष्णा मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास ने कहते हैं कभी भी हम अपने उपाय करके माया से छूट नहीं सकते, कितने भी प्रकार के उपाय करके माया से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, और जावतीय इच्छा को जावतीय प्रकार से पूर्ण करने के लिए चाहो, कभी इच्छा का समाप्ति नहीं हो सकता, नेवर एवर, इच्छा की पूर्ति कभी हो जाए, पूरे समग्र त्रिलोक ब्रह्मांड के सारे समग्र वस्तु आपको दे दिया जाए तथापि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता, ना माया से छूट सकता है, ये दोनों संभव ही नहीं है। आप मिट जाएंगे, ना माया मिटेगा ना मन भरेगा, ये दोनों कभी नहीं भर सकता ना। तो फिर करे क्या? नहीं, माया से निकलने के लिए, मन को भरने के लिए जो उपाय है वो करना पड़ेगा। क्या? नमन से, वचन से, कर्म से, केवल श्री भगवान की शरणागत हो करके उन्हीं के भजन में रहें, उन्हीं के जन को सेवा करें, तभी ये दोनों काम बन सकता है, तभी बन सकता है। नहीं तो मल मल करके शरीर को कितने धो, गंगा गोमती में कितने भी स्नान करो, बैल के बैल बना रहेंगे, मन के मैल कभी निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकल सकता। भगवान ने तो खुल करके ऐलान कर दिए, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया धृतया, मले गुणमयी माया, ये मेरी माया है, मम माया, मेरी माया को कौन माइकलाल है टक्कर दे, ये मम माया, इसलिए धृतया, इसी बचा नहीं जा सकता। इसी को प्रहलाद महाराज आज के श्लोक को कहते, माया सृजितंग, हे प्रभु आपने इस संसार चक्र को निर्मित किया, मन प्रधान, इनमें मन ही मुख्य है, और इस चक्का में हम पीछे जा रहे हैं। एक कैसे चक्का? बोले 16 आरी वाले चक्का, षोड़श आरसंग, षोड़श आरी क्या क्या है ना, ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय हो गए 10, और मन हो गए चूड़ी उनके ये हो गए 11, और 5 महाभूत या 5 तन्मात्रा मिला तो वही 16 हो गए। 16 चक्का रूपी ये संसार चक्र में हम पीसे जा रहे हैं, जैसे गन्ना पीसते हैं ना, ऐसे पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं इस चक्र में। इस चक्र से हे प्रभु आपके हेल्प के बिना कोई निकल सकता है क्या? तदन्य को का तरतिते, कौन तर सकता है आपके बिना हेल्प में बहु, क्योंकि आपकी ही माया के द्वारा बनाया हुआ, आपके द्वारा बलियसी, कैसे बना, कहां से, कैसे, कब बना, अरे अनादि कर्म फल, उसका कोई आदि थोड़ी ना, बिगनिंग नहीं, नहीं पता नहीं कब से मैं ये आपको भूला, कब से मैं भोगने की इच्छा किया, कोई हिस्ट्री नहीं उसका, कोई इतिहास नहीं है। वो इतिहास को खोजते रहो तो मर जाओगे डूब करके, तो निकलने के लिए प्रयास करो, निकलने के प्रयास करो। डोंट आस्क कब, कैसे, क्यों, अरे मूर्ख ऐसे करते तो मर ही जाएगा, मर तो रहा है। कोई आदमी पानी में डूब रहा है, कैसे भी गिरा पता नहीं, डूब रहा है, अगर वो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कमिटी के बैठाएगा, बोला मैं क्यों गिरा, क्यों डूब रहा हूं, तो फल क्या होगा, मरेगा, यही रिजल्ट होगा, और कुछ नहीं हो सकता। रिसर्च कमिटी यहां डूबते हुए बैठा गया, इन्वेस्टिगेशन कमिटी मर ही जाएगा, और क्या होगा। तो इसलिए ये कमिटी छोड़ो, कुछ नहीं, चिल्लाओ, आतुर आकुल बिकल होकर के चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कोई बचाने वाला भी नहीं है, हरि एव शरणम, केवल श्री प्रभु, जहां जिनका हाथ सब जगह में पहुंच सकता है, और सभी प्रकार के वॉल्यूम के, सभी प्रकार के भाषा को जो समझ सकता है, सुन सकते हैं, सर्वसमर्थ एकमात्र कृपालु सुहृत प्रभु, जो आपको बचाने के लिए आपके पास खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, तो उनको पुकारो, उनको पुकारो, वो अगर वही आकर उठा लेंगे, लेकिन पुकारने के साथ साथ परम श्रद्धा विश्वास के साथ पुकारो। वो जैसे राजी खुशी आपको उठाएंगे, तो राजी खुशी उनके हिसाब से उठ जाओ तो उठ जाओगे, तो अपना बुद्धि चलाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा, तो ही बचा लेंगे। तो उनके बिना और कोई उपाय नहीं है, किसी प्रकार से निकला नहीं जा सकता, नो। इसलिए भगवान ने खो दे, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तंत, माम एव ही, केवल मुझे ही शरणागत होने से मेरे द्वारा इस माया से छुटा जा सकता है, नहीं तो माया से निकलने के लिए कोई और उपाय नहीं। का तरंतिते त्वद अन्य, आपके बिना कौन तर सकता है प्रभु। तो ले दे करके प्रहलाद महाराज ने हम सबको सिखाते हैं कि बिना हरि के सहायता, बिना हरि के शरणागत, बिना हरि के भजन से, बिना हरि के सेवा से कैसे कोई बच सकता है, इस दुख से निकल कर सुखी हो सकता है? संभव ही नहीं। और इस चक्र में आप प्रयास ना करें तो ये जो इच्छा है ना मनुष्य का, ये जो मन है, मन ही तो इच्छा करता है। इच्छा कौन करता है? मन ही करता है। प्लानिंग सारे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये डिपार्टमेंट इतने तो मन का ही है। बुद्धि तो कोई डिसीजन लेता है, बस मन ही ये तीनों काम करता है। ये चोड़ी बनकर बैठा तो ये तीनों जितने विचार सोचना करता है, कितने अनुभव करता है, कितने योजना बनाता है, ये सारे ठप करके, सारे बंद करके ये मन से सपने में कोई मरीचिका के पीछे भागते भागते प्यास बुझेगा क्या? हाथ पर टूट जाए, जीभ निकल जाए, तभी प्यास ना बुझे। पानी है ही नहीं, हो झूठा में कैसे मिलो, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये मन की ये तथाकथित थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इस व्यापार से ठप करके छोड़ करके तो क्या करें? बोलते हैं कि केवल आपके शरणागत हो जाए और आपके भक्तों की शरणागत हो जाए। आपके शरणागत होने का उपाय है आपके भक्तों की शरणागत हो जाए, आपके भक्तों की सेवा करके उनके शरणागत हो जाए। इससे आप खुश हो जाते हैं और अपना अकाउंट डिलीट मार देते हैं, आप ही कर पाएंगे ये काम। तो इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ हमारे लिए उपहार स्वरूप ये मानव देह मिला है। केवल मनुष्य शरीर से ही ये काम बन सकता है भैया, बाकी कोई शरीर से तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। तो ये जो हमारे मन की योजना है, जो इच्छा है, इतने प्रबल है, वो हमको ऐसे भका लेता है कि इसके चक्कर में आकर के हमारे बुद्धिनाश होता है। हमको पता नहीं चलता कि कम हम भग गए और अपने लाइन से, ट्रैक से आउट हो गए, पता नहीं चलता। हमको बिना पता चले हमको, हमारे मन को, हमारे आत्मा को खींच करके आउट ऑफ ट्रैक कर देता है। इस इच्छाएं, ये मन इतने खतरनाक ले जाता है और इसी के चक्कर में जा करके इस संसार में विषय भोगने की कामना के चक्कर से हम आउट ऑफ ट्रैक होकर के अनंत जन्म से चढ़ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ, ये विशेष भेंट है भगवान की तरफ से, अत्यंत दुर्लभ दिव्य उपहार है मानव देह, ये मनुष्य शरीर मिला। इसी शरीर से ही इस संसार चक्र कदन से निकला जा सकता है। यस, कैसे निकला जा सकता है? ये मनुष्य शरीर में बाकी कुछ ना करो, केवल मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के शरणागत होकर के उनको भजना करो। क्या पता ये क्षणिक मनुष्य शरीर फिर मिले ना मिले। अगर मनुष्य शरीर कभी मिल भी गया, क्या पता ये वृंदावन के धाम मिल ना मिले। अगर वृंदावन धाम में मिल भी गया, क्या पता इस्कन मिल ना मिले। अगर इस्कन में आ भी गए, कोई और काम धाम में फंस गए, भागवत क्लास में मिले ना मिले। तो इसलिए केवल ये भगवान के दरबार में ना कोई झूठ ना पैरवी चलता है, ना कोई और करेंसी चलता है, केवल भजन का करेंसी चलता है। यही करेंसी चलता है और ये करेंसी के बटोर लो। उसके लिए बैंक में अकाउंट खोलना जरूरत नहीं, कोई ट्रेजरी रखना जरूरत नहीं। इस धन को जितने फिर ना मिले नौका, जितने हो सके बटोर लो, इकट्ठा कर लो। ये धन ऐसा है ना, कभी सड़ेगा, ना सूखेगा, ना घटेगा। जितने बांटोगे इतने बढ़ोगे। कोई चोर चोरी भी नहीं कर सकते, चोरी करेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। कोई ठग ठगने के, चिटिंग करने के लिए आएगा, वो भी सुधर जाएगा। अद्भुत धन है, ऐसा रत्न है, इस मनुष्य शरीर में ही संभव हो सकता है। इस दुर्लभ दिव्य भेंट भगवान के द्वारा ये चांस, प्रभुपाद जी कहते हैं सेकंड चांस, दूसरा अवसर मिला है हमको, तो उसको ऐसे नहीं मिटा दो। भगवान की इतने महान कृपा आप और हम लोग के ऊपर, एक तो ये मनुष्य शरीर दिए, उसके ऊपर कहां से खींच खांच कर ला करके ब्रज में पहुंचाए, और फिर इतने सुंदर भक्तों की संगति इस संस्था उस महान सुंदर भगवत भजन की महामंत्र की औषधि के द्वारा इतने सुंदर उपाय ये सारे भागवत क्लास इस सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी प्रभु ने। हमको उद्धार करने के लिए कृपा करने के लिए जितने संभव हो सके इस नालायक के लिए सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी अगर हम लोग उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर उसके प्रति हम अलर्ट नहीं रहेंगे, उसको सही से उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर क्या पता क्या होगा। तो इसलिए जहां जिस प्रकार स्थिति में अभी है, एक एक क्षण भी दुर्लभ है, हम हाई अलर्ट हो जा करके आतुर होकर बिकट होकर के प्रभु के सहाय्य के लिए पुकारना चाहिए। वही केवल हेल्प कर सकते हैं, उन्हीं के कृपा से उन्हीं की माया छूट सकता है और उन्हीं के कृपा से उन्हीं के भक्तल को आकर के उन्हीं के साथ संबंधित करके हमको उबार दे सकते हैं। सचमुच भगवान को तो पुकारते हैं कभी विपद में आकर के, लेकिन पुकारने के बीच में भी हमारे श्रद्धा हमारे कहीं ना कहीं दुर्बल रह जाता है, विश्वास कहीं ना कहीं दुर्बल हो जाता है, तो फिर मार खा जाते हैं। एक सत्य घटना में बताऊं, एक डायरी से मैं पढ़ा था, एक वॉरियर एक मिलिट्री अफसर थे, आर्मी अफसर थे, उन्होंने अपने डायरी में लिखे थे दो साल पहले कि उनका जाति स्मरण होते ना, उनको दो बार जन्म हो गया था। वो बोलते हैं कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, कहीं बॉर्डर में हिमालय के ऊपर में कहीं खड़े थे, और यहाँ अकस्मात उन्होंने राइफल लेके चलते किसी दुर्भाग्य कारण उनका पैर फिसल गया, बॉर्डर से तो हिमालय की चोटी था, बर्फीला चोटी, फिसल गया, न जाने कई हजार फुट नीचे गिर रहे थे, और थोड़ा अंदाज लगा आप और हम होते इसे गिर रहे होंगे तो क्या करेंगे। अपने महान से महान नास्तिक भी चिल्ला करके भगवान को पुकारा गया कि नहीं, और कोई उपाय नहीं भैया, अंधकार हिमालय की चोटी से, और क्या डार्क नाइट था, और फिसल गए, कैसे हाथ छूट गया, किसी प्रकार से फिसल गया। अरे वो तो मरी रहे थे बिल्कुल, बहुत हजार फीट हाइट से गिर रहे हैं, विकल होकर के पूरी शक्ति लगा करके पुकारे, प्रभु बचाओ प्लीज प्लीज, भगवान को ऐसे विकल होकर के पुकारे, और जो गिर रहे थे अंधकार के नाइट में भयंकर नहीं थे, बिल्कुल फुल फोर्स पुकार रहे थे, तो एक आकाशवाणी सुनाई पड़ा, शून्यवाणी सुनाई पड़ा उनको, क्या मैं जो कहूंगा तू करोगा, तू करोगे। तो सुना थे यहां ये अंधार रात हिमालय की चोटी में कौन मुझे बोल रहा है, ये तो निश्चित रूप से मेरे प्रभु ही है जिनको मैं पुकार रहा हूं, तन मन वचन से विकल होकर जिनको पुकार रहा हूं वही ही बोल रहा होगा निश्चित। ये विश्वास करके बोला प्रभु आप क्या कह रहे हैं, आई हैव नो अदर होप, आई एम होपलेस, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा नहीं, जो बोलेंगे सो करूंगा प्रभु, निश्चित करूंगा। क्या सचमुच मेरे ऊपर तेरा विश्वास है ना प्रभु, वही पूछ क्यों रहे हैं, विश्वास का लोग है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इस आकाशवाणी होते होते हठात उनके सामने एक पेड़ के जड़ आ गया, एक जड़ दिखाई पड़ा अंधकार में, देखो हाथ में आ गया, और प्लास में जैसे टाइट कर पकड़ लिया, इसे हाथ में पैर में जकड़ करके उस जड़ को पकड़ लिया उनने, कहीं वैसे पत्थर से कोई पेड़ उगा हुआ था उसके जड़ को पकड़ लिया, वो झूल रहा था इसमें, इधर उधर झूल रहा था, जड़ को पकड़ रहा था, पकड़ा है बड़ी टाइट से पकड़ा हुआ है, लेकिन कब तक पकड़े रहेगा, अब क्या खाएगा, कब तक ऐसे पकड़ करके जी पाएगा। तब थोड़ा भरोसा तो आ गया, बोले प्रभु इतने सब सहारा दे दिया, अब तुम तो गिरूंगा ही नहीं, पकड़ लिया कस करके, लेकिन बचा दो प्रभु, कुछ तो सहारा दे दो। फिर बिकड़ होकर फिर पुकारा, फिर आकाशवाणी सुनाई पड़ा, क्या विश्वास करोगे ना, क्यों मुझे पूछ रहे बार बार, मैं पूर्ण विश्वास तो कर ही रहा हूं, और है क्या, मरी तो रहा हूं, अभी इतने सहारा मिला, बचा दो प्रभु ना, जो बताऊं सो करोगे ना, बिल्कुल करूंगा, बताओ प्रभु क्या करूं, अभी स्थिति में क्या करूं, ना करोगे ना, फिर प्रभु पूछो मत, बोलो क्या करूं ना, हाथ पैर छोड़ दो हे भगवान बड़े मुश्किल से तुम पकड़ा हुआ है हाथ पर, उसको छोड़ दो क्या, आपको मुझे मरवाना चाहते हैं। भगवान नीरव है, नीरव है, कुछ किया ही नहीं, फिर झोल मार रहा है, फिर पुकार रहा है, प्रभु बोले मैं बोल रहा हूं ना प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं, ये कोई कृपा क्या है, बड़े मुश्किल से तो सहारा मिला, हाथ पर पकड़ू उसको छोड़ दूं, कुछ बोलो प्रभु, ना पूर्ण विश्वास है ना पूरी विश्वास है, करूंगा बिल्कुल करूंगा, ना हाथ पर छोड़ दो, अरे यही तो नहीं कर सकता मैंने, हाथ पर कैसे छोड़ दूं। तीन बार वाणी यही कहा, सुनने वाणी हाथ पर छोड़ दो, और छोड़ा ही नहीं, कैसे छोड़ सकता हूं भैया इस हालत, और मर ही गया, वही लटक कर मर गया, हाथ पर नहीं छोड़ा। और वो लिख रहे हैं कि मेरा दोबारा जन्म हुआ, क्योंकि अंतिम समय में बड़े भयंकर रूप से मेरे प्रभु को स्मरण किया था, याद किया, तो इसलिए दोबारा मुझे मनुष्य जन्म मिला, और इसी इलाका में मिला, और दोबारा मुझे वही अपॉइंटमेंट मिला उसी क्षेत्र में, वही आर्मी अफसर बनकर हुआ, तो मुझे याद आया, अरे मुझे याद आता है, तो मुझे कुछ सहली मैंने फोर्स को साथ में लेकर के उसी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर जाकर देखा, देख मेरा आंख खुल गया, देखा कि एक पेड़ के जड़ से इस कंकाल अभी भी लटक रहा है, स्केलेटन अभी पकड़ा हुआ है, स्केलेटन भी पकड़ा हुआ है जड़ को, और केवल नीचे से 5 इंच के हाइट है, कितना है 5 इंच धरती पर ऊपर है, मैं अगर छोड़ देता क्या हो जाता मेरा, ये चेयर भी था 8 इंच है कि 10 इंच है, उससे कम हाइट में था, इतने कम हाइट में कितने आसान से मैं बच जाता, लेकिन मेरा भरोसा हुआ नहीं प्रभु के वाक्य पर, लटक गया मर गया, हाय हाय करते रहा। हम लोग कभी ऐसी स्थिति आता है, यद्यपि प्रभु को बिकल होकर कभी पुकारते भी हैं, और कभी पुकार प्रभु पूरी तरह से मदद करना भी चाहता, बोले करो, लेकिन हमारा फिर भी विश्वास नहीं, कैसे करूं, आपने दुर्बुद्धि, आपने जो छोटी समझ के कारण हम ही मर जाते हैं, अपने बुद्धि लगा करके विश्वास को खो देते हैं, और प्रभु के वाणी पर पूर्ण भरोसा नहीं करते हैं, इसे लटक जाते हैं। अगर पूर्ण भरोसा करना है तो हाथ पर छोड़ दो हाथ पर उनके ऊपर में, तो वो जब उठाएंगे तो फिर कैसे उठाएंगे, वही तो आश्चर्य। तो इसे इस स्थिति आता है, इसी स्थिति में हमको गुजरना होता है, ऐसे अगर विश्वास को दृढ़ रूप से हम मेंटेन कर पाए, ऐसे प्रभु को प्रार्थना कर पाए, और करने पर भी अगर प्रभु सहायता करे, उनको विश्वास के साथ हम आजमाए, तब जाकर के हमारा उद्धार हो जाए, तब उद्धार हो जाए। मेडिसिन है, वैद्य है, और सब कुछ है, लेकिन हम बच नहीं पा रहे हैं, क्यों, विश्वास में डामाडोल अभी भी हमारा स्थिति चल रहा है, सब कुछ स्थिति होकर के। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज इस प्रकार स्तुतियों के द्वारा हम बारंबार हमको याद दिलाते हैं, सब कुछ है लेकिन पूर्ण शरणागति अभी नहीं हुआ है, अभी भी केस गड़बड़ी है, तो इसलिए कभी प्रयास करो पूर्ण रूपेण हरि के शरणागत हो जाओ, और उनके भक्तों के शरणागत हो जाओ, तभी आपके मुक्ति के चिंता ही छोड़ दो, वो तो होकर ही रहेगा। हरे कृष्ण।